लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है बन के तपसी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाए हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।
ओम शांति। आप सभी मुलुंद, कहने को मुलुंद के लेकिन विशेष रूप से मधुबन में पहुंच गए और स्पेशल योग तपस्या के लिए, तो आप सभी मधुबन के योगी तपस्वी भाई बहने जो इतने सुंदर वातावरण में विशेष रूप से कितने पहली बार या हर साल आते हैं, पांडव भवन में पहली बार और इतनी सारी सीनियर बहनों के साथ आप तपस्या करने के लिए पधारे हैं, आप सबका इस प्रभु के आंगन में, इस अल्लाह की फुलवाड़ी में, बगीचे में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। नहीं तो आते हैं एक दिन के लिए और ऊपर घूमने आते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करके एक रात को रह जाते हैं बस। बहने भी पहले ऑडिट करवाने आती थी, उससे पहले तो रहती थी लेकिन बाद में सिर्फ ऑडिट कराने अकाउंट्स जैसा रह गया था, फिर वो भी पूरा हो गया क्योंकि संख्या बढ़ती गई और ये आंगन उतना का उतना ही रहा। और आज इस अल्लाह के बगीचे में, अल्लाह के आबाद किए हुए प्रयागराज से हमारे बीच आदरणीय मनोरमा दीदी जी पधारे हैं। मीनाक्षी बहन से मैं आग्रह करूंगी, आप इस महकती फुलवाड़ी में थोड़े से महकते फूलों द्वारा स्वागत करेंगे मनोरमा दीदी का। पुराने भाई बहने जानते हैं मनोरमा दीदी को, आप रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में स्पेशल यहाँ ज्ञान सरोवर के लिए पधारे तो उनमें से खींच के आपको हम लेकर आए कि सभी दर्शन कर लें, कि जो इतने सारे वहाँ रहने वाले, इलाहाबाद में रहने वाले धर्म के संत महात्मा, तरह तरह के मंदिर के महंत, पता नहीं कैसे कैसे लोगों की बुद्धि को ठीक करने में, सेट करने में लगे हुए हैं और बड़े मनोरम तरीके से। आप हिंदी भाषा के धनी हैं, उर्दू के अल्फाजों का भी इतना सुंदर प्रयोग करते हैं कि पता ही नहीं चलता, लगता है आपकी ही सहज भाषा है, इतना सुंदर लखनवी अदब आपके अंदर। और ब्राह्मण कल्चर तो है ही, वो ब्राह्मण कल्चर जब शीर्ष पर पहुंच जाती है तो बहुत सारी कलाओं का संगम हो जाता है। तो ऐसी बहुत अच्छी कवियत्री भी हैं हमारे आदरणीय मनोरमा दीदी। अपनी किशोर अवस्था में ही उन्होंने भगवान को पहचाना और अब लगभग 50 वर्ष नहीं तो 55 वर्ष से अधिक तो हो ही गए होंगे। वो अपनी जरूर कहानी खुद सुनाएंगे ज्ञान में, क्योंकि ये तो हम सबसे सुनेंगे ज्ञान में कैसे चले, ज्ञान में विशेष निश्चय बिठाने वाली बात आपकी क्या रही, और आज इस भट्टी की शुरुआत में इसका शुभारंभ हम कर रहे हैं संपूर्ण स्थिति की तैयारी के साथ, क्योंकि बहुत वर्ष हो गए सबको बहुत कुछ करते हुए, बहुत तरह का पुरुषार्थ करते हुए, लेकिन क्या अवस्था, क्या तैयारी चाहिए। अभी भी जो सेंटर पर अवस्था होती है, जो मधुबन में अवस्था होती है मन की, वो घर जाकर क्यों नहीं रहती है, अपने कारोबार में क्यों नहीं रहती है, मुरली सुनने के बाद 8-8:30 बजे के बाद स्थिति बदलना क्यों शुरू हो जाती है, और शाम के 8 बजे तक अगर सारे हलचल सारी बातें रिकॉर्ड की जाएं और खुद स्क्रीन पर देखी जाएं तो वो लगता ही नहीं कि मैं बीके हूं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है ना, तो वो सारी सेटिंग यहाँ 4-5 दिनों में करके जाना है। 4 दिन है आपके पास और अपना पर्सनल टाइम भी आपके पास है, तो वो कैसे करेंगे, और वापस चले जाना है तो रिटर्न जर्नी की तैयारी कैसे करेंगे। हमारे बीच बहुत बहुत एकनिष्ठ, बहुत ही सुंदर मनोरम तरीके से अपनी बात को समझाने वाले हमारी वरिष्ठ दीदी, आदरणीय मनोरमा दीदी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनसे सुनेंगे। हमारे पास खुला टाइम है 7:30 बजे तक, आप जैसे भी बांधे रखें, जैसे भी इनको नचाएं, जैसे भी करें, वो सब करेंगे। ये उठाएं, बिठाएं, बहलाएं, ले जाएं परमधाम, नीचे ले आएं, जो आप कराएंगे हम सब करेंगे। हम भट्टी में बंधे हुए हैं ये सब करने के लिए। थैंक यू दीदी।
ओम शांति। हमारी बहन ने बहुत 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 कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया ना। निसंदेह बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आप। न केवल भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। संकल्प, संकल्पों की दुनिया में बहुत सारे आते हैं। अगर यहाँ की भट्टी के लिए भी मन में आया तो संकल्प ही होगा। कहते हैं भगवान के दर पे आने का ऑफर मिला, भाग्यशाली। आपने मन बनाया, आप सौभाग्यशाली। छुट्टियां ली, तैयारी की और आप पहुंच गए तो पद्मा पदम भाग्यशाली। तो एक बार तो अपने लिए ताली बजा लो कि ये बाप दादा की कर्म भूमि है, हमारी दादियों की तपस्या भूमि है, मातेश्वरी का वो स्थान है जहां आज आप पहुंचे हो। यहां की कण कण में ऊर्जा है, आवश्यकता है उस ऊर्जा को संजोने की। जब हमारा मन कहता है ना हम भट्टी करें, दीदी को रिक्वेस्ट करते हैं भट्टी कराइए ना, कुछ कराइए ना, इसका तात्पर्य क्या होता है। जैसे आपके अपने व्हीकल्स जो रोड पे ट्रेवल करते हैं, चलते चलते भारी हो जाते हैं ना, बोलते हैं इनकी सर्विसिंग करा लेते हैं, बहुत भारी हो गए, गाड़ी ठीक चल नहीं रही, थोड़ा ग्रीस हो जाएगा, थोड़ा मोबिल बदल जाएगा, थोड़ा धुलाई सफाई हो जाएगी। सो लाइक दैट भट्टी क्या है, हमने लाके वर्कशॉप में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अब इस गाड़ी पर जितने इंजीनियर आएंगे वो क्या करेंगे, गाड़ियों की सर्विसिंग हो जाएगी, धुलाई भी कर देंगे, ग्रीस भी डाल देंगे, मोबिल भी चेंज कर देंगे, साफ सुथरी चमकती हुई गाड़ी लेके जाएंगे, भट्टी में आए ना, तो भट्टी माना हमारी अपनी पुरुषार्थ की एक प्रकार से सर्विसिंग हो जाना। बाबा के शब्दों में कहें सबसे बड़ा धोबी है, धुलाई कर देगा, बहुत नीट एंड क्लीन कर देगा। तो भट्टी में आना ही माना अपने मन को चारों ओर से समेट के आज हम इस तपस्या स्थली पर आ गए। हमने अभी एंट्री की बहन से पूछा क्या कराना है, कहने लगे हमने तो अंतिम समय की तैयारियां रखा है, विषय समय काल परिस्थितियों को देखते हुए क्या कहेंगे हम, क्या वर्तमान में अंतिम समय से गुजर रहे हैं। एक जमाना था, अभी बहन बता रही थी कि मैं किशोर अवस्था से हूं, 6 साल की आयु से मैं पकड़ के उंगली आई हूं पेरेंट्स की, ज्ञान सुनने, जब ज्ञान सुनने की समझ नहीं थी तो कब सुना करती थी, अरे ये बॉम्बे ताश के पत्ते की तरह क्या होगा। मुझे लोग कहा करते थे यहां मधुबन में भी, अरे बॉम्बे देख जाओ, नहीं तो कब आओगे, जब ये डूब जाएगा तब आओगे। तो मैं हंसती थी, अरे ऐसे थोड़ी डूब जाएगा, ऐसे थोड़ी कुछ हो जाएगा। लेकिन आज आप देखो क्या नजारा है, ये पानी तो हर साल बरसता है, कभी भिगोता है कभी डूबोता है फिर निकल जाता है। लेकिन इस बार का जो क्रम चल रहा है निरंतर वो भयावह हो गया है ना। कब ये वक्त हमारी मुट्ठी से फिसल जाता है, किसी से भी कहो, बालू होती है ना नदी के किनारे, उसको हाथ में भर के रखो, अच्छा कस के पकड़ना, कितना ही कस के पकड़ लो मगर धीरे धीरे वो झड़ते हुए आपका हाथ जब 5 मिनट बाद खुलवाया जाता है तो खाली होता है, उसमें एक कण नहीं होता बालू का। ठीक उसी तरह ये वक्त हमारी मुट्ठियों में बंद नहीं होता, ये वक्त फिसलता है। अभी अगर हम आप सबसे पूछने लग जाएं कि इस ज्ञान में कौन कब कितने साल से, अच्छा हुआ उन्होंने किशोर अवस्था से बताया, बड़ी लज्जा आती है किस बात की, जब लोग कहते हैं ज्ञान में 50 साल से चल रहे हैं, 60 साल से चल रहे हैं, तो मुझे हंसी भी आती है, ज्ञान हम में कितने साल से चल रहा है। हम रोड पे चलते हैं, हम गाड़ियों में चलते हैं, हम एयर में चलते हैं, ये ज्ञान में चलते हैं ये क्या चीज है भाई। अच्छा ज्ञान में चल रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, ये बताइए ज्ञान आप में कितने साल से चल रहा है। ज्ञान में तो आप वर्षों से चल रहे हैं। वो जो संग तराश जो मूर्ति गढ़ने वाला जगत नियंता है बाबा है, रोज हमें जब 3 पेज का 4 पेज का प्रेम पत्र भेजता है तो रोज तराशता है हमारी आत्मा को, रोज ही हमारे नैन चैन को बदलने की बात करता है। लेकिन हमने कितना उसको अपने आप को सौंपा है कि हे शिल्पकार तुम चाहे जितनी हथौड़ी और छेनी लगाओ हमें देवता बनना ही, हम उफ नहीं करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है पीछे हट जाते हैं। तो ये विचार करने वाली बात है कि ज्ञान हम में कितने साल से चल रहा है। दूसरा, हम सब यहां तैयारी करने आए हैं अंतिम समय की। पेपर तो आप सबको मालूम ही है, मालूम है ना अंतिम समय का पेपर कौन सा है जी। वाह सारे अर्जुनो, हाँ ये सच है, ऐसा एग्जामिनर भी कहीं नहीं मिलेगा जो पेपर आउट करके चलता हो। पेपर आउट है कि हमारा जो अंतिम पेपर होगा वो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का होगा। अर्जुन को भी सारा ज्ञान दे दिया गया था गीता में, और 65वें श्लोक में बहुत स्पष्ट कह दिया गया था, हे अर्जुन नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, सर्वधर्माणि पर्तज्यम् एकं शरणं व्रज, अहम् त्वाम् सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, तुम सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तुम मेरे अति प्रिय हो। इसके पहले उन्होंने जब मध्याजी भव, मनमना भव मध्याजी भव माम नमस्कुरो, ये कहा है कि तुम मेरे अति प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें इतना गोपनीय बात बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? मुझ में समा जाओ, मध्याजी भव हो जाओ, मनमना भाव हो जाओ, तुम मेरे अनन्य हो, और तुम्हें भी मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं याद आना चाहिए। अब बातें तो दोनों आसपास कही गई हैं गीता के अंदर 18वें अध्याय में, 1:64 और 1:65। जब पढ़ते हैं तो कई बार हंसते भी हैं कि इतनी सारी संस्कृत पढ़ने को भगवान ने नहीं कहा, कितने प्यार से रोज हमें पढ़ाता है। ये दो ही मंत्र है मन मना भव मध्याजी, हर ब्राह्मण कुलभूषण को याद होगा, लेकिन क्या वाकई मन मना भव और मध्याजी भाव से हम होकर गुजरते हैं? लाख कहा हो हे अर्जुन माम एकम शरणम ब्रज, लाख वायदे किए, भगवान ने स्वयं आप बच्चों से प्रतिज्ञा की है, तुम आओ तो सही मेरी शरण में, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, मोक्ष दे ही दूंगा, सफर और मंजिल दोनों तुम्हारे हाथ में है। लेकिन जब हम झांक कर देखते हैं, जैसा अभी बहन कह रही थी कि दिनचर्या को अगर हम सुबह से शाम तक देखें तो हमें लगेगा नहीं नहीं, जो कहता है भगवान वो नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं है? जब पढ़ वही रहे हैं, सुन वही रहे हैं, कुछ करना भी नहीं है, बाबा के बन गए हैं, बाबा के अलावा दुनिया में कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, जो हमारा बाबा कहता है बिल्कुल पक्का है, उसके सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। उठते हैं तो बाबा, बैठते हैं तो बाबा, खाते हैं तो बाबा, सोते हैं तो बाबा, कोई मुसीबत आ गई तो बाबा, क्या करते हैं? यही करते हैं ना, न जाने कितनी बार हमारे मुंह से बाबा निकलता है। लेकिन हम औरों की बात जाने दें, हमारी आदरणीय जानकी दादी सामने लाइव एग्जाम्पल, उनके बाबा कहने में और हमारे बाबा कहने में अंतर है, आवाज मतलब मुंह से कहने में अंतर है, रियलाइज करना तो एक अलग बात है। मैं ये बात इसलिए आपसे शेयर कर रही हूं, मुझे बड़ी दादी का भी बहुत सानिध्य मिला और दादी जानकी जी का भी बहुत सानिध्य मिला, मेरा सौभाग्य है ये, बहुत करीब से देखने का मौका मिला। हम केवल कहते नहीं है कि वो जनक हैं, कितनी उपराम है, कितना अनोखापन है उनमें, बिल्कुल डिटेच्ड है, नष्टो मोहा है। हम कहीं चलते हैं बड़ी तैयारियां करते हैं, यहां भी आए होंगे, रिजर्वेशन कराई होगी पहले, पहला काम तो यही कराया होगा, और फिर चलने से पहले बैग लगाई होगी, बैग में कपड़े लगाए होंगे, दवाइयां लगाई होंगी, यानी क्या क्या जरूरी चीजें लगाई होंगी ना, कहीं कुछ रह ना जाए। पीछे जो संसार छोड़ आए हैं उस संसार को भी उसकी जिम्मेवारियों से अवगत कराया होगा, उन्हें बताया होगा, देखो तुम ये कर लेना ये कर लेना। अच्छा मोबाइल तो नहीं लाया कोई? अच्छा लाए? शिव 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 लाए? अरे हम तो समझे मोबाइल नहीं लाए। फिर बताइए, हमने तैयारी अधूरी छोड़ दी ना। तो जब हम जैसे स्थूल तैयारियां करते हैं और हर एक इम्पॉर्टेंट चीज का बहुत अटेंशन देकर रखते हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि जब हमें घर चलना है तो हमें कौन कौन सी तैयारी करनी है। वहां ये मोबाइल काम आने वाला नहीं, ये चार्जर भी काम आने वाला नहीं, उधर से इधर फोन आ सकता है क्या? नहीं ना। अच्छा इधर से उधर भी नहीं जा सकता। भट्टी में हमारा मोबाइल अगर तप जाए तपस्या करके तो परमधाम लग जाए? नहीं लगेगा। और मैं तो कहती हूं बिल्कुल ऑफ कर देना चाहिए। तकलीफ होगी क्योंकि बहुत सारे कारोबार होंगे, लेकिन वास्तव में ये हमारी तैयारियों में एक बहुत बड़ा विघ्न है। छोटी सी बात करके समझा देती हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें मुझे नहीं आती। कि जब कोई फोन यहाँ आता है, आप गहन योग में बैठे, बहुत अच्छा योग लग रहा है आपका, बहुत अच्छी क्लास चल रही है, और एक रिंग बज गई या वाइब्रेटर पे कुछ हुआ, आप बाहर चले गए, आपने अटेंड किया, अगले ने आपको कोई ऐसी सूचना दी, अभी आप जा सकते हो वापस मुलुन? नहीं ना। अभी आप 5 दिन की भट्टी के लिए आए हो, लेकिन आपका मन चला गया ना, डिस्टर्ब हो गया। अब होते हुए भी हम यहां नहीं हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि स्वर्ग में नरक की आवृत्ति क्यों, उस दुनिया को इस दुनिया में लाते क्यों? समझा? इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम पहुंच थोड़ी जाएंगे वहां जंप मार के, और पहुंचेंगे भी तो 24 आवर्स लगेंगे या 12 आवर्स लगेंगे, तब तक तो वहां बहुत कुछ हो चुकेगा। तो जो जहां मौके पर है उसको वहीं संभालना। युद्ध के क्षेत्र में है अर्जुन, कुरुक्षेत्र के अंदर जो जहां जिस योद्धा के सामने था, वो शल्य के सामने था कि द्रोणाचार्य के सामने था कि कर्ण के सामने था, जो जिस योद्धा के सामने था वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा था। ऐसा नहीं कि सामने वाले को देख के बोला अर्जुन जल्दी आ जाओ, ऐसा नहीं किया किसी ने, किया क्या? तो यहां भी हम लोगों को विचार करने का कि बॉम्बे में जो कुछ घट रहा है वो बॉम्बे वाले ही निपटेंगे ना, अपन को क्या करना? ऐसा ना हो कि ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ये मोबाइल है जो हमें बीच में डिस्टर्ब करता है, इसको तो रखने का ही नहीं। 5 दिन सारे कनेक्शन काट के, सालिग्राम बनना है ना, तैयारी करनी है। सबसे पहले तैयारी करनी है तो बैग में ड्रेस डालनी है। कौन सी ड्रेस डालनी है? फरिश्ते की ड्रेस डालनी है, नस्टुमोहा वाली ड्रेस डालनी है, भगवान के नैनों का नूर बनने के लिए वो नूर वाली नूरानी ड्रेस डालनी है, हाँ भगवान के साथ साथ अंग संग रहना है, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग मिलन मनाऊं, कहते हैं ना, बस बाबा तुम ही तुम हो, ऐसा कुछ, ऐसी कोई ड्रेस डालनी है, अनविजिबल पर्सनालिटी बननी है, ऐसी कोई ड्रेस डालनी। कितनी ड्रेस यहां 5 दिन 6 दिन के लिए अपन लाए, तो हमने ऊपर जाने के लिए कितनी ड्रेस रखी? आज तक नूरानी कहूं या रूहानी कहूं, हमारी वही ड्रेस तैयार नहीं है, अन्यथा भगवान को बार बार देह सहित देह के संबंधों से मुक्त होने की बात न करनी पड़ती है। ऐसा अभी कहीं कुछ इस देह में है, कहीं कुछ देह के भान में है। मैं ये नहीं कहती कि आप अभिमान में हैं, आप अहंकार में हैं, अभी बहन कह रही थी कुछ शेयर करने की, एक बहुत आनंद भरी बात आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं अपने आप को बड़ा विनम्र समझती हूँ, समझती थी भी, समझती हूँ भी। कहीं कुछ अटकता है, अगर अटकता है तो मन भटकता है। बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी। कभी गई नहीं थी, सेंटर पर थी, बड़ी बहन मेरे साथ थी, उन्हें कुछ हुआ। मैंने कहा चलो दिखा लाए आपको डॉक्टर को, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चली गई। और वहां बड़ा लंबी लाइन और देर लग रही थी, तो वहां से मैंने कहा चलो वापस, ठीक नहीं है, शाम को प्राइवेट डॉक्टर को दिखा देंगे। वो गवारा नहीं हुआ कि वहां लाइन में खड़े हो, कभी खड़े नहीं हुए थे। उनसे कहा चलो, वो इतनी सीधी थी, बोली चलो, ये जो अपने राजू भाई है ना मुरली डिपार्टमेंट में, फोटो स्टेट में, इनकी लौकिक सिस्टर थी, मेरे साथ वो बड़ी थी, तो वो मेरे साथ लौट गई मेरे बिल्कुल कहने से, बोली चलो। तब तक वहां किसी ने आवाज दे दी है कह के कि सुनिए, आप लोग ट्रेनीज हैं क्या, व्हाइट ड्रेस से ऐसा लगता है, हॉस्पिटल में भी व्हाइट होती है। तो मैंने पलट के जवाब दिया जी नहीं, और फिर पलट के चल दी। तो बोले सुनिए सुनिए, आप बता तो जाइए कि आप लोग कौन है, कहां से आए। तो बड़े अंदाज से बता दिया कि चरित्रमार राजयोग संग्रहालय से आए। कहां है ये, क्या है? मैंने कहा क्या करेंगे जान के, आप लोग अपने ट्रेनिंग से यही व्यवहार करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा मगरूरियत कह लो, अभिमान कह लो, एनीवे कुछ तो मुझ में आ ही गया था जो मैंने उन्हें जवाब दिया। तो उस बंदे ने मुझसे ये कहा कि अच्छा चलिए, हम लोग तो दुनियादार हैं, ऐसे होते ही हैं, आप लोग तो अच्छे से बता देते। मैंने कहा अगर कुछ जानना है तो आप अच्छे से सेवा केंद्र पे आ जाइए, बता दूंगी, तब भी कहीं कुछ नहीं, कोई लोच नहीं, और चली आई वहां से। लेकिन उसकी उस बात ने मेरे चिंतन में एक कंकड़ डाल दिया। मुझे बड़ा नाज था कि मुझे कोई कुछ कह दे कि आप यहां से जूते हटा दो तो मैं हटा दूंगी अपने हाथ से, कोई कहे कि आप हाथ कर दो मैं थूक दूं तो मैं हाथ कर दूंगी, मुझे कोई अभिमान नहीं। लेकिन उस बात ने मुझे थोड़ा कहीं पीड़ित किया। अब वो पीड़ा मेरी वहीं रहती तो अच्छा था, लेकिन यहां तक आ गई, मधुबन तक, और चलता रहा दिमाग में कि ये है क्या, अहंकार मुझ में है नहीं, मैंने ऐसा व्यवहार क्यों किया, इसको क्या कहेंगे। और ये मुझे मेरी परवरिश में सिखाया गया था बचपन से कि अगर तुम घर से बाहर भी निकल रहे हो तो आवाज करके निकलो, बाहर बैठा हुआ पुलिस वाला बैठा ना रहे। खुदा ना खास्ता एक अधिकारी की औलाद थी तो निकलने पर सर्वेंट को अपनी पोजीशन में होना चाहिए, पुलिस वाले को अपनी पोजीशन में होना चाहिए, आप बाहर निकलो और वो बैठा रहे ये आपकी इंसल्ट है। तो आप खुद आवाज देते हुए निकलो ताकि वो अपने सामान में रहे, आप अपने सामान में रहो। तो आदत नहीं थी, मुझे लगा कि ये ठीक बिहेव नहीं किया इसलिए उसको रिस्पॉन्ड दिया। लेकिन गूंजता रहा यहां आई तो मैं खोज रही थी कोई ऐसी टीचर मुझे जवाब दे कि जो मुझे ड्रामा न कहे, जो मुझे संस्कार न कहे, जो मुझे चला न दे बात उत्तर देखे। तो स्वदेश बहन से मैंने पूछा खोजते, स्वदेश बहन ने कहा चलो क्लास में उत्तर देती हूँ। तो मैंने कहा मैं तो नीचे जा रही हूँ, ये क्लास जो आप कराओ ना मेरे को भेज देना। और उन्होंने वायदा निभाया, बहुत छोटी थी लेकिन प्रॉमिस जो किया था उसको निभाया और भेजा मुझे। बहुत अच्छा उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, अहंकार बोला वो जो है बहुत बड़ा शत्रु है, और उससे जब हम नीचे उतरते हैं, गिरते हैं अहंकार की वजह से, तो हमारे हड्डियां नहीं बसती, बहुत टूट फूट हो जाती है। बोला दूसरी स्टेज है देह अभिमान, तीसरी स्टेज है देहभान। बड़ा अच्छा क्लियर किया उन्होंने। तो उन्होंने देह अभिमान को कम से कम 8-9 तरीके से क्लियर किया। आप भी जब बाबा के बच्चे बने तो जिस दिन से बने अहंकार तो आपने उस दिन ही छोड़ दिया, सेंटर के दरवाजे पे ही छोड़ दिया, निसंदेह आप में अहंकार नहीं है। किंतु वो जो देहाभिमान की बात की उन्होंने, वो अपने आप को चेक करना है या नहीं है, मैं नहीं कहती कि है या नहीं है, आप चेक करना। उन्होंने कहा ये हमारा साथ थोड़ा मुश्किल से छोड़ता है, और ये क्या चीज है, ये कभी कभी रूप का, कभी कभी पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का, कभी हमारे पद पोजीशन का, कभी हमारी कास्ट का, कभी हमारे हुनर का, हम बहुत टैक्टफुल हैं, कभी हमारे स्पीकर होने का, कभी हमारे इंटेलिजेंसिया का, एनीवे मतलब बहुत सारे रूप हैं जो हमको कहीं ना कहीं देह अभिमान में लाते हैं। अहंकार नहीं, छोटा भाई है। और आप देखना उन्होंने उसकी निशानी बताई, आश्रम पर जब कोई कार्य होते हैं और बड़ी दीदी हमारी सेवाएं बांट रही होती है, हम अपना शांति से बैठे होते, लोग कहते हैं आप बोले नहीं, अरे ये जिम्मेवारी तो आप बहुत अच्छी तरह उठा सकते थे, आपके घर में चार गाड़ियां हैं, ड्राइवर भी हैं, आप दीदी को बोल सकते थे कि भाई दो गाड़ियां मैं दे दूंगा, मेरे पास, बाबा ने तो कहा ना तन मन धन साधन सुविधा सबसे बलिहार जाना है, है मैं दे दूंगा। तो जब पड़ोस वाला बोलता है तो उत्तर आता है दीदी को पता नहीं है क्या, बोलेगी तो कर देंगे ना, मैं मना कब कर रहा हूं, हम अपने पड़ोसी सहपाठी को ये उत्तर देते हैं। Why for? हम क्यों वेट कर रहे हैं वो हमें कहें तो हम करें, ये हमारा देह अभिमान है। कर लेंगी ना, इसीलिए तो बोल नहीं रही है वो हमको, कह देंगे किसी को, है ना। तो ये जो मेरे मन का भाव है, क्या देह अभिमान में नहीं आता? हम भगवान के बच्चे बने, हम खुद को ऑफर करें, दीदी जो भी हमारे योग्य हो आप बता देना। अरे विश्व के रंगमंच पर विश्व के कल्याणकारी उस शिव पिता के हम संतान हैं, और ये केवल उसका कार्य नहीं है विश्व कल्याण का, हम भी उसके भागीदार हैं, हम भी उसके ठेकेदार हैं। हमें गर्व होना चाहिए, हमारी भी उंगली लगी, हमारी भी सेवा लगी, हमें भगवान ने इस योग्य बनाया हम कुछ कर सके। तो आगे से आगे बढ़ करके हम अपनी योग्यता को, हम अपने धन को, हम अपने तन को, हम अपने मन को, हम अपने साधन को, हम अपने संबंध संपर्क को लगा सकें, ऑफर कर सकें। खुला ऑफर है, जब बहनें सेवा करती हैं, कोई बड़े प्रोग्राम्स रखती हैं, तो आप सबके दम पे ही तो रखती हैं। तो वो एक अवसर देती हैं हमको कि हम उस समय अपना वो सब सफल कर सकें। उनकी ओर से हमें ऑफर मिलता है, लेकिन क्या हम भी ऑफरिंग देते हैं? हम भी कहते हैं कि यस रेडी करिए, आप हमसे जो भी हो बता दीजिएगा। तो हम अपने उस समय इंटेलेक्ट को बचा लें, हम अपने साधनों को बचा लें, हम अपनी सुविधाओं को बचा लें, हम कुछ और कर लें, ये क्या है? सूक्ष्म है बहुत, चेक करना। अगर ये है तो हमें देही अभिमानी की ड्रेस, फरिश्ते वाली ड्रेस, रूहानी ड्रेस, रूहानी के साथ वो नूरानी ड्रेस चमकती हुई बैग में रखने को मिलेगी। पहली तैयारी कपड़े तो चाहिए ना, तो हमने पहनना क्या है? अपनी आत्मा का जो लिबास है हमने रखा क्या, बनाया क्या? ये स्थूल कपड़े तो आप दर्जी को दे देंगे, सिल के आ जाएंगे, जिस क्वालिटी का चाहेंगे दे देंगे, लेकिन उस भगवान के अंग संग रहने का वतन में मौका मिला, क्या पहनेंगे? पहली ड्रेस है हमारी देही अभिमानी होने की। तीसरा भाई और है देवान, ये तो मैंने देह अभिमान वाली बात बताई, जो देह भान है वो अक्सर करके ये हमारे मुंह से कहलवाता है, दीदी हम कैसे करेंगे, एक भाई भी कर दो ना साथ में, हम बहने कैसे कर पाएंगे। अरे बाबा ने तो बहन भाई बनाया ही नहीं, चतुर्भुज बनाया। आप जो चाहे वो कर सकते हो। तो हमारे मुंह से निकलता है कर तो सकते ना, लेकिन थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा तबीयत पानी में हाथ डालने से बिगड़ जाती है ना, ये देह भान है, सर्दी गर्मी बहन भाई लज्जा भय, ये देह भान है। तो तीन कैटेगरी उन्होंने बता दी। अब मुझे मेरे पाले में गेंद डाल दी कि मैं सोचूं मैंने किस भाव के वसीभूत होकर वो जवाब दिया था। ये उन्होंने क्लियर कर दिया, ड्रामा नहीं कहा, संस्कार नहीं कहे, कल पहले मैंने कहा था ये नहीं कहा। तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म, जब कपड़े सिल के आते हैं ना तो आप देखते हो कोई कमी तो नहीं दी है, फिटिंग सही है, वैसे ही खुद देखो कि हमने चलने की तैयारियों में सबसे पहला नंबर कौन सी ड्रेस बैग में डाली, हम कितने आत्मिक स्वरूप में, कितने देही अभिमानी, कितनी कर्मातीत अवस्था में हमारी ड्रेस की शाइनिंग कितनी नूरानी है। पहली चीज है हमें ड्रेस डालनी है ना। दूसरी चीज, जब ड्रेसेस लगा लेते हैं, दवा की तो वहां जरूरत नहीं पड़ेगी ना, कुछ खाने पीने को चाहिए नहीं चाहिए? अरे वाह क्या बात है, चाहिए। जैसे पानी चाहिए होता है ना, ऐसे हमारे अंदर कुछ चाहिए। ये वो सफर नहीं है कि जिस सफर में हम बड़े सहज चले जाएंगे, बड़े हर्डल्स आएंगे। बाबा कभी कभी नहीं कहता कि वो मुंह में मोहलरा डाल दो, कहता है ना सफर में निकले हो, सफर में धूप तो होगी, किसी ने लिखा है जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। चलने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कई बार ट्रेनें इस बारिश में फंसी रहती हैं, 24-24 घंटे आपके बॉम्बे से तो दो बार ऐसा हो चुका है, लटक गई थी बिल्कुल। तो क्या होगा हमारे साथ, उसके लिए हम कितने निर्मल, कितने दृढ़, कितने निर्भय, कितने एकाग्र, कितने आत्मनिष्ठ हुए। ये चेकबुक है सारी है। निर्भयता तभी आती है जब मन में बहुत पक्का हो भगवान हमारा साथी है। निर्भयता का आधार है हर समय उस भाग्य विधाता को साथ रखना, नहीं तो ये न निकले मुंह से, अरे न जाने किस घड़ी में निकले थे, किस मुहूर्त में निकले थे। हमारा तो हर पल मुहूर्त बहुत अच्छा है, संगम युग, ये किस एक जन्म की बात नहीं है, 21 जन्म की भी बात नहीं है। अभी अभी बाबा ने मुरली में कहा है पूरे कल्प के लिए तैयारी कर रहे हो, तो हर परिस्थिति को फेस कर सकते हो, लेकिन कब, जब हर पल। हे अर्जुन निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय बुद्धि भगवान हमारा साथी है, ये ध्यान रखना बहुत बड़ी बात है। अभी अगर कोई एक फोन आएगा तो हम कहेंगे ऐसा करो फला के पास चले जाओ, वहां से इतना ले आओ, दोबारा रिंग बजी थोड़ी देर बाद, वो आउट ऑफ सिटी है, कल ही यूएसए निकल गया, क्या करोगे? बोला अच्छा दूसरे के पास चले जाओ, बोला वो हॉस्पिटलाइज है। तो जब कभी कोई बात आती है तो हम अपने आसपास जो आधार बिंदु हैं, उन पर ध्यान रखते, उनको आवाज देते, उनसे संपर्क करते हैं, उनको खोजते हैं। अरे किस दिन कहा मुरली में बाबा ने, कहा क्या किसी मुरली में कहा हो तो बताओ, ये कहा मुझे याद करो, कहा पड़ोसी को याद करो, कहा किसी को याद करो, फिर हम क्यों याद करते हैं। और आपको पता हो कि जब तीन लोग नहीं मिले, चौथे नंबर पे हम कहते हैं बाबा, तो बाबा कहता बुला ले पहले और जिसको बुला लिया और भी बुला ले एक आध किसी को। विचार कर लीजिएगा, जब हम लास्ट में बुलाते हैं तो भगवान भी नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता, सुनना चाहिए ना, बच्चे हैं, गलती हो गई भाई, नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता, जो जानबूझ के जुर्म करता है उसको सजा ज्यादा मिलती है, अनजाने में कोई करता है तो चलता है। अभी बहन जी हमारा परिचय दे रही थी इलाहाबाद से, आप सब ने कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक ऐसा व्यक्ति था जो रोज शिवजी पे जल चढ़ाता था और उसके बाद दो डंडे मार के आता था। वहां एक जगह है पड़ीला महादेव, और अभी भी मतलब वहां है वो प्रथा, वहां है लोग प्रसाद यूं नहीं चढ़ाते, फेंक के मारते। तो वो जो है क्या है, बहुत घनघोर बारिश में खाना खाने बैठा, उसे याद आया अरे मैंने वो डंडे तो मारे ही नहीं, वो खाना थाली छोड़ दी उसने, गया दौड़ के। तो वो मशहूर है वहां, और भगवान भी उसके इंतजार में, क्या जो आया नहीं। तो जो अनजान है, अनपढ़ है, हाँ, उसको वो जो है जैसा है भगवान वैसे ही मान लेता है। लेकिन तुम्हें तो बता चुका है ना कि हे अर्जुन तुम्हारे लिए मैं ही सब कुछ हूं, फिर भी तुम इधर उधर घूमते रहे, मुझे पहला नंबर क्यों नहीं याद किया। विचार करके देखो आप, गड़बड़ की कहीं हमने। तो अगर भगवान हमारा साथी है तो हर परिस्थिति में, अप्स एंड डाउन में, कुछ भी हो, तन का, मन का, धन का, पहला शब्द हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए, बाबा। इसीलिए मैंने अभी दादी जानकी का जो एग्जांपल कहा, लाइव एग्जांपल, कितना बाबा से प्रीत है और कितना वो इसके विपरीत है तन के, वंडरफुल है। यहां दादी बैठे हुए थे और हम लोगों की मीटिंग नीचे ऑर्गेनाइज की थी, हम कभी जनवरी में निकल के नहीं आते हैं, हमारे यहाँ माघ मेला होता है, इंटरनेशनल, इंडिया में कहीं नहीं होता जितना बड़ा होता है, जैसे कुंभ होते ऐसे होते। लेकिन दादी ने बुलाया इसलिए आए दौड़ के, और दादी वहां नहीं थी तो इधर तो जीरो हो गया, दादी नहीं है क्या होगा। खैर दो दिन वहां किसी तरह काटे, यहां आए तीसरे दिन, दादी इंद्रप्रस्थ में बैठी थी। तो दादी को मैंने पूछा, मैंने कहा दादी आप नीचे क्यों नहीं थे। अब छोटा मुंह बड़ी बात, हुज्जत। तो दादी बोली अरे मिठरी बात तो सुन, क्या हुआ था। बैठ गई, मैंने कहा हाँ दादी बताओ क्या हुआ था। उस दिन मुझे वो घटना मालूम हुई कि यहाँ हमारी सभी दादियां 20 जनवरी को, 18 जनवरी बाबा का दिन मनाते, 20 जनवरी को शांति स्तंभ पर एकत्र होते, क्योंकि वो जो अस्थि कलश वहां उस दिन रखा गया। तो दादियां एक साथ खड़े होकर वहां योग करते, और दादी खड़े होकर योग कर रहे थे, एकाएक पीपी सूट कर गया। तो दादी अंदर चले गए इंद्रप्रस्थ में, और दादी ने सबको मना कर दिया, कोई अंदर नहीं आएगा। इवन देन प्रवीणा बहन, हंसा बहन बोला कोई नहीं, नो डॉक्टर। अब बहुत अच्छे से संकल्प करके तैयार होके कि बस अब बाबा मुझे ले जाएगा। ये उसी दिन की बात नहीं है, मैं सामने सामने कई बार देख चुकी हूं कि दादी कहती बस ये आज कब छोड़ देने वाली हूं पता नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे वो यूनिफॉर्म की तरह पहना हुआ शरीर कभी भी उनके हाथ में है, वो छोड़ देंगे। और वो अंदर जाकर के लेट गए, बोले कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं आएगा अंदर, मुझे चुपचाप शांति से पड़ा रहने दो। और जाके उन्होंने डायरेक्ट बाबा से अप्रोच लगा ली, उठा लो मैं तैयार हूं, बिल्कुल न्यारे एकदम। अब बहनों का तो मन नहीं मानेगा ना, 5 मिनट 7 मिनट मैंने एक दो बार धीरे से खोल के देखा, झांक के देखा, उनको आहट लगी, तब उन्होंने आवाज दी। तो बहन ने कहा दादी से कि आ जाए, दादी ने कहा आओ, पता लगा पीछे पीछे वो डॉक्टर भी। तो दादी ने कहा देखो ना ये लोग क्या करते हैं, मैं तो जाने को तैयार। मैंने कहा दादी ऐसे नहीं होगा, आप ऐसे कैसे चले जाओगे हम लोगों को छोड़ के। काफी देर चर्चा हुई उनसे, तो दादी को मैंने देखा कि वो हर पल उपराम रहती है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो इस शरीर को केवल पहन के बैठी हुई हैं, वो जिस दिन संकल्प कर लेंगी छोड़ के चली जाएंगी। तो बाबा हमारे साथ हर पल हो, और हमें इस देह का ये एहसास हो कि हम जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें छोड़ देंगे। ये हमारे हाथ में, पता नहीं हमारा क्या होगा, नेवर। सब कुछ हमारे संकल्प पर निर्भर करता है। हम ब्राह्मण कुलभूषण है, हमारी पूरी तैयारी है। जब कपड़े तैयार होते हैं, जब ड्रेस तैयार होती है, तो पुरानी छोड़ने में ज्यादा कष्ट नहीं होता। अच्छी लगती है पुरानी हमको, वो अलग बात है। कई बार हमें संस्कारों की भी ड्रेस तैयार करनी पड़ती है। हमारे कबर्ड में बहुत कुछ रखा होता है, एकदम नए कपड़े होते हैं, लेकिन जब खोलते हैं ना तो वो पुराना वाला जरा फिट ज्यादा है, उसी पे हाथ जाता है, हैंगर से निकाल लेते हैं। अरे कल अच्छा सिलवाया था, इसलिए सिलवाया था, यही पहन के जाना है, कर क्या रहे हो। बोला नहीं ये जरा फिट ज्यादा है। तो हमें हमारे संस्कारों की जो फिटिंग है इस संसार की, वो बहुत खींचती है, और हम बार बार मन के कपाट खोलते हैं। ज्यादा देर नहीं लगती, 2 सेकंड लगता है, वही पुराने संस्कार वाली खींच लेते हैं। कहां तैयारी हमारी, हमारे संस्कारों की दिव्यता की चमक, उठते बैठते चलते फिरते, हमारी वाणी में, हमारी दृष्टि में नजर आनी चाहिए। अनेकों बार बाबा ने कहा आप चलते फिरते म्यूजियम। अरे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपको देख के, आपके इस नूरानी चेहरे को देख के लोगों को पकड़ में आ जाएगा कि ये इस दुनिया के नहीं, किसी और दुनिया के। लेकिन कब आ जाएगा, जब हमारी संस्कारों की ड्रेस दिव्यता के साथ सिली हुई होगी। अगर संस्कारों की ड्रेस सिली हुई नहीं होगी, बहुत बहुत कम समय में बाहर आ जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि मंच पर बैठे हैं वो मत सुनो, ना वो देखो। जब मंच से उतर के नीचे हो और आप जैसा जीवन जी रहे हो, उस समय हमारी कथनी और करनी में कितना साम्य है, तब समझो कि हाँ हम भगवान के बच्चे हैं, तब समझो कि हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, तब समझो कि हम तैयार हैं। हम किस बेस पे कहते हैं कि हाँ हम तैयारी के लिए आए। यहां अगर हम आए हैं तो पहली चीज ड्रेस देख लें, आज तो पहले ही दिन है ना, अच्छा है। अगर वहीं से सिलवा के लाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं लाए हैं तो यहां तैयार कर लें। यहां घर्षण बहुत कम होगा, संघर्षों का, संस्कारों का कोई संघर्ष नहीं होगा, क्योंकि यहां तो आप बने बनाए देवता। ये वो जगह है कि जहां बाबा कहा करता था साकार में, पांडव भवन के बाहर, गेट के बाहर कोई भी विकृति यहां प्रवेश नहीं करती, विद चैलेंज नहीं करती। शीश महल है ये, न जाने कितनी बार दादी के मुखारविंद से सुना, शीश महल है ये, और आज भी पांडव भवन शीश महल है। यहां यदि कोई कुछ करना चाहे, कि मुझे कोई नहीं देख रहा, ये गलती भूल के मत करना। यहां सहस्र आंखों से स्वयं बाबा देखता है। मैं आपको बता दूं, पहले दादी के पास मैं भी हैरान होती थी कि दादी के पास न्यूज कैसे पहुंचती है। दादी आंगन में बैठी होती थी, दिन भर में कई बीकेस कई लोग घूम जाते थे दादी के आगे। दादी ओम शांति, दादी बड़े प्यार से मिलती थी ओम शांति। कुछ कहना है जी दादी? वो 25 नंबर कमरे में विशाल भवन के सामने से निकल रहे थे ना, तो वहां कुछ ऐसी चर्चा हो रही थी। आ गई बात दादी के पास, दादी नहीं गई विशाल भवन, बात आ गई। एक दिन जस्ट एक स्वीपर ने आके दादी को बताया, दादी फला नंबर रूम में एक छोटा सा टुकड़ा निकला है। किसका? सिगरेट का। खबर आ गई, कौन ठहरा है, एकोडेशन से पूछ लिया। अभी क्या रहा, न जीना रहा न मरना रहा जिसने भी डाला था उसके लिए। तो यहां कोई चीज छुपती नहीं, और ये नहीं कि दादी जी चले गए तो अभी कौन पूछता है, नेवर। आज भी यहां अगर कुछ होता है तो यहां जिनको निमित्त बना रखा है बाबा ने, वो खुद कहते हैं कि हमारे कदम घूम के वहां पहुंच जाते हैं जहां कुछ हो रहा होता है। तो ये ऊर्जा भूमि है, ये शीश महल है बाबा का, और यहां कुछ छुपता नहीं। तो आप आए हैं यहां अपनी तैयारी करने, और उस तैयारी में कोई कमी न रह जाए तो इसलिए संस्कारों का भी क्या करने का, प्रबंध कर लेने का, है ना? जिसको बाबा दृष्टि में वृत्ति में और कृति में परिवर्तन लाने की बात कहता है। तो हमें अपने संस्कारों की भी तैयारी करनी, और घबराना नहीं कभी। हाँ, जो भी करना वो दृढ़ता से करना। अगर एक दिन फेल हो जाओ हर्जा नहीं। मैं बताऊं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बहुत गुस्सा आता था। दो कारण थे, खून में खराबी थी, वो खून ही उन लोगों से दिया हुआ था मेरे अंदर जो बड़े जोशीले होते, और दूसरी बात परवरिश की खराबी थी, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता। तो बाबा का बनने पे क्रोध नहीं करना है, दीदियां तो यही सिखाती है ना, फेंक देती थी अगर कोई चीज छू ली किसी ने, टच भी कर ली तो। अभी क्या करने का, नहीं करने का। तो सारे भाई बहनों के बीच में क्लास में मैंने बोला, भाई गुस्सा नहीं करने का, हाँ ठीक है, कौन करेगा इसकी प्रतिज्ञा? तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूं पहले। कर लिया, और उसके बाद उन दिनों घर में रहती थी, घर जाकर के कुछ ऐसा हुआ कि कर्मणा में गुस्सा किया, वाणी की तो बात जाने दीजिए। दूसरे दिन जब आई, अफसोस बहुत हुआ, क्लास में बोला कि भाई आज अभी कोई दूसरा संकल्प नहीं लेगा क्लास कराने, दूसरे सेंटर पर जहां जाती थी। तो मैंने कहा अभी कोई संकल्प नहीं लेगा, मुझसे गलती हुई है, मेरा वचन पक्का नहीं हुआ, मुझे कल भी इस पर अपने आप को पक्का करना है। तो वाणी ने किया, और उसके तीसरे दिन भी फिर मैंने वाणी वाली बात सुना के क्लास में, सबके बीच में सबके सामने, अगले दिन के लिए भी एक्सक्यूज करके अपने लिए ही रखा। तीसरे दिन देखा क्या होता है, मन सामने आया। चौथे दिन जाके ओम शांति, कुछ नहीं हुआ चौथे दिन। तब जाके मेरे को आया कि अच्छा चलो कहीं ब्रेक लगा। उसके बाद पक्का कर लिया कि किसी भी संस्कार को अगर अच्छी तरह मिटाना है, संस्कार को दिव्यता की ड्रेस पहनानी है, तो एक दिन में न तो परास्त हो जाओ युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में 6-6 दिन युद्ध चलता था, रोज शाम को संख बजता था और युद्ध समाप्ति की घोषणा होती थी, लोग एक दूसरे के हालचाल लेते थे, लोग एक दूसरे के कैंप में जाते थे। ऐसा नहीं था कि युद्ध है तो मिलना ही नहीं आपसे, आपका मुंह नहीं देखना, है ना। तो आप फिर ट्राई करो, ट्राई अगेन, फिर ट्राई करो, तीसरे दिन ट्राई करो, चौथे दिन ट्राई करो, पांचवें दिन करो, आखिर तो आपका दामन छोड़ेगा, क्योंकि आप दृढ़ हो, मुझे इसको अपने घर में रखना ही नहीं है। कभी किसी ने किसी शत्रु को अपने घर में जगह दी है? नहीं दी ना। तो जब हम किसी शत्रु को स्थूल में जगह नहीं देते तो सूक्ष्म में हम क्यों दें? तो हमें दृढ़ता के साथ फेस करना है। और दृढ़ता कहीं से खरीदनी नहीं है, वो जो मैंने पहली बात बोली कि भगवान हमारा साथी है, शांति का सागर साथ में लगा हुआ है, हम तप क्यों रहे हैं? हम ज्वाला क्यों बने हुए हैं? तो हमें उस अग्नि को समाप्त करना है जो क्रोध की अग्नि है। जब उसके पीछे हाथ धोके लग गए, ओम शांति हो गए। तो हमें कुछ करना है, और कभी भी चार बांस नहीं लगाने। ये भी आपको सबको मालूम होगा, चार बांस कौन से हैं। जब बादशाह अकबर ने एक व्यक्ति को केवल इसलिए सजा दी थी, सारी रात पानी में खड़े रहने पे, कुछ हुआ नहीं तुमको, रात को क्या देखा, महल में जलते हुए रोशनी के उसने स्तंभ देखे थे, तो क्या बोल दिया, बोला अच्छा इसीलिए तुमको सर्दी नहीं लगी। तो बीरबल ने सबक सिखाने के लिए चार बांस लगाए थे ना, हम भी चार बांस लगाते हैं। हम खूब सुन रहे हैं कि वक्त बहुत कम है, हम खूब सुनते हैं चला चली की बेला है, हम खूब सुन रहे हैं कि दो घंटी बज चुकी हैं, बहुत कुछ सुनते रहते हैं, बावजूद उसके हमने भी बांस लगाए हुए। कौन कौन से आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। जो हमारे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं ढीला करते हैं, हमारी खिचड़ी नहीं पकने देते, आग तो हमने जला रखी है, योग तो हम करते हैं लेकिन पक नहीं रही है, डायरेक्ट कनेक्शन हो ही नहीं रहा, वो बीच में बांस लगे। कौन कौन से कोई बताएगा? बाबा ने भी बताया, हाँ क्या करें बहन जी, गृहस्थी है, आप लोग तो सेंटर पे बैठे हो, ऐसा ही है क्या? हाँ राइट, चलेगा, बहुत बढ़िया, और काफी जानकार है आप लोग, और कुछ रियली माना आलस्य, अलबेलापन, ये जो बहानेबाजी बहन ने कहा ना, तो ये सब क्या है, ये वो बांस है आलस्य का, अलबेलेपन का, श्रीमत में मनमत मिक्स कर लेने का, और कुछ चौथा बांस जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे, बहाने बाजी आई गया, हो जाएगा, कर लेंगे, रागी गे के गीत गाते रहते, जो करना है काल करे सो आज कर। इन बांसों को हटाना पड़ेगा अगर हम तैयारी करने आए हैं तो, पक्का। जब तक हम इन बांसों को नहीं हटाएंगे तब तक स्मृति लब्धा नहीं बनेगी। अगर हम नहीं हटाएंगे तो वक्त हटाएगा। अभी आप यहां बैठे हैं, बहुत बारिश है वहां, क्या करेंगे? हमने देखा है, हमसे बहुत लोगों ने कहा चलो बाहर दिखाने चलो, बाहर दिखाने चलो। इलाहाबाद में शहर के अंदर नावें चल रही थी। मैंने मना किया, किसी की जान जा रही है तुम्हें बाहर देखने का बड़ा है। नहीं माने, नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ। एक बहुत अच्छे मना बड़ी खुली सड़कें हैं, गाड़ी लेके निकले हम लोग, तो एक बंगले से एक बहन निकल रही थी। उसने इतना छोटा सा सूटकेस अपने सर पे रखा हुआ था, पानी यहां तक था उसके। कार डूबी हुई थी और वो पकड़ के खड़ी हुई थी, कभी बंगले की ओर देखती थी, कभी रोड की ओर देखती थी। वो दृश्य मैं आज तक नहीं भूली। 84 की बात है ये, कि गजब है, कितने प्यार से बंगला बनाया होगा, कितने प्यार से फर्नीचर लगाया होगा, न जाने क्या क्या होगा। चलते समय कितना समेट पाई होगी उस सूटकेस में जो सर पे रखा हुआ था। बहुत बड़े घर परिवार की थी, फिर भी अंत में मोह नहीं छूट रहा था। उस बंगले को छोड़ते हुए भी बार बार देख रही थी, और ऐसे में अगर पानी का एक झोंका और आता तो जो यहां तक था वो यहां तक आ सकता था। हम बड़े खुश नसीब हैं कि भगवान ने हमको डिटैच रहना सिखाया। हम कितने सीखे हैं ये हम समझ लें, समझना, चेक करना है इसको कि हम कितने सीखे। क्योंकि आधी पंक्ति नष्टो मोहा है और आधी पंक्ति स्मृति लब्धा है। जो मेरी स्मृति अनन्य माना, जिसका कोई अन्य ना हो, जो स्मृति को प्राप्त हो गया, स्मृति को प्राप्त हो गया। गीता खुद कहती है, रामायण भी कहती है। रामायण में एक चौपाई आती है, वही जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें ही हो जाए। परमात्मा जिसको जनवाना चाहता है वही उसे जान सकता है, और जानने के बाद वही हो जाता। जानत तुम्हें हो जाए। मुझे आज तक इसका अर्थ नहीं समझ में आया कि परमात्मा तो हो नहीं जाएगा, ये कैसे लिख दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन ज्ञान के हिसाब से समझ में आता है कि जब हम स्मृति को पा जाते हैं, परमात्मा को अपने हृदय में समा लेते हैं, या हम परमात्मा के दिल तत्व पर बैठ जाते हैं, तो क्या होता है, जानत तुम्हें ही हो जाए। माना हम तत्सम हो जाते हैं, तद्भव माना ऐसे हो जाते हैं जो भगवान के गुण हैं, जो परमात्मा की शक्तियां हैं। बाबा कहता ना, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर कल्याणकारी। तो जब हम जितने जितने करीब आते जाते हैं, एक कहानी है, जब विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो घोर तपस्या की। और क्यों तपस्या की, ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के स्वयं ब्रह्मा ने कहा, तुम तो विश्वामित्र ऋषि हो गए हो। उन्हें संतोष नहीं हुआ, वो चले गए कह के, और वो फिर लग गए। फिर उन्होंने घोर तपस्या शुरू की। दोबारा आए तो बोले, तुम राजर्षि हो गए हो। कहा, मैं ऐसे नहीं मानने वाला, मुझे ब्रह्मर्षि कहो। तो कहा, ब्रह्मर्षि कैसे कह दूं, अभी कुछ कमियां हैं। बोला, ठीक है। वो इतनी तपस्या की, थोड़ी बहुत तो अतिशयोक्ति होती ही है हर कहानी में, कि लोगों ने बताया कि वो धुआं निकलने लगा, इतना ज्यादा उन्होंने तपस्या की। मतलब इतना भस्म कर दिया विकृतियों को, कुछ बचा नहीं। तो जब वो लोग पुनः आए तो उन्होंने कहा, आज विश्वामित्र तुम ब्रह्मर्षि हो गए हो। तो लेने वाले ने भी यूं ही सौदा नहीं किया, उसने कहा, हो गया हूं आप कहते हो, मैं कैसे समझूं कि मैं ब्रह्मर्षि हो गया हूं। बोला, वेद मुझको वर्ण करें तो मैं समझूं कि मैं ब्रह्मर्षि हो गया हूं। तो उन्होंने वरदान दिया, तथास्तु, वेद तुमको वर्ण करेंगे। अभी आप समझना इस कहानी को, अपने ज्ञान में इसका क्या अर्थ है। वो ब्रह्मर्षि हो गए, माना जो वैदिक ज्ञान था वो उनके अंदर समा गया। वेद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वेद संस्कृत की विद धातु से निकला हुआ है। वेद को अपौरुषेय माना जाता है। किसी भी पुरुष ने वेद उच्चारण नहीं किए, ऋषियों मुनियों की वाणी नहीं है। जैसे मुस्लिम मानते हैं कि कुरान पाक की जो आयतें हैं वो मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई थी, ऊपर से नीचे उन पर उतरी थी, माना उनका चिंतन नहीं, ऊपर से आई थी। ऐसे ही ऋषियों ने जिन्होंने लिखा है उनका चिंतन नहीं है, ये ऊपर से उनको मिला, इसीलिए अपौरुषेय कहा जाता है। तो वेद माना परमात्मा का डायरेक्ट ज्ञान, तो वो कहां मिल रहा है हम बच्चों को? कहां मिल रहा है? हम बच्चों को मिल रहा है ना। तो वो वेद हमारा वर्ण करे, वर्ण करे माना बाबा की जो वाणी हम सुनते हैं कुछ और नहीं है, साक्षात वेद है। ये वाणी जो हम सुनते हैं वस्तुतः साक्षात वेद है, और ये हमारा वर्ण करे माना हमारे अंदर समा जाए, हम वो बांस हटा दें चारों, आलस्य के, अलबेलेपन के, बहानेबाजी के, और ये सोचना कि हो जाएगा। श्रीमत के विपरीत मनमत और परमत पर चल, थोड़ा चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। मैं उदाहरणों में समय नहीं देना चाहती, लेकिन बाबा कैसे क्या करा लेता है आपके निश्चय की पर। यहां भट्टी कर रही थी अच्छे से, वो 100 टीचर्स की भट्टी थी, यहां से लौट के गई बहुत खुश, बाबा का राइट हैंड बनना। हम लोगों को एक संकल्प दिया गया था, बड़े खुश होके वहां उतरी, पहला फोन मिला फलां की हड्डी टूट गई है। युगल थे, उनके कोई इशू नहीं था, और बाबा के श्रीमत को खूब जी भर के मानना, जिसको कहते हैं लौकिक नहीं है, लौकिक नहीं, किसी से कोई संबंध नहीं, उनकी हड्डी टूट गई है। उनके युगल भी चले गए छोड़ के, अकेली बहन, और अगले ने उसके साथ ही साथ ये और कहा हम कुछ नहीं करेंगे, कोई सेवा नहीं करेंगे, हमने इसलिए थोड़ी जीवन दिया है। मैं सुनती रही थोड़ी देर तक, सुनती इसलिए रही कि मेरे लिए कुछ चीजें आश्चर्यजनक थी। भाई क्लास ही वहां कर रही है, 25 साल से वो बहन वहां क्लास कर रही है, आयु भी 70-75 के बीच की है, कौन करेगा? बोला इनके लौकिक को, अब लौकिक जब जीवन भर नहीं लिया, उस पक्ष को टच ही नहीं किया, तो कहां से आज कोई लौकिक खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा खोजो, पूछो, फिलहाल मैं आती हूं देखती हूं। मैं गई, मैंने कहा इनका एक्सरे तो करवाओ। करवाने के बाद वहां से उस एक्सरे की रिपोर्ट ली, ले जाके स्पेशलिस्ट को दिखाया, उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा और कोई तरीका नहीं है। चलो ठीक है, वो भी करा देंगे, सवाल यह है सेवा कौन करेगा। तो बाबा की मुरली सुना रही थी, और वो कुछ ऐसी ही मुरली थी, तो मैंने पूछा लोगों से, सब तज एक भज, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो कौन करेगा? लौकिक को हमने तो पहले ही छोड़ दिया था, 40 साल पहले अलविदा कह दिया था। मुझसे तो अगर आप पूछें तो मुझे याद ही नहीं आता कि कोई लौकिक में कहीं, बिल्कुल नहीं याद आता, किसी का नाम नहीं, रूप नहीं, कुछ नहीं याद आता, क्या होगा? तो एक बहन ने कहा दीदी अगर सेवा की जरूरत है तो मैं हूं। बहुत अच्छे परिवार की महिला, और उसने कहा 8 बजे सुबह से 8:30 बजे तक मैं करूं। मैं उसको बधाई दी, मैंने कहा अच्छा, और हंस के रह गई, मैंने कहा अच्छा जब जरूरत होगी तो मैं आपसे सहयोग ले लूं। एडमिट कराया, ऑपरेट कराया, सब बहुत अच्छे ऑपरेशन हुआ, बैठी रही, उसके बाद मिलके आई, बहुत अच्छा। उनको हर पल डेली जा करके एक बार साहस बढ़ाती रही, हो गया, सब कुछ हो गया, रिलीज हो गई, तब भी मैं वहां थी ओआरसी में, गीता रहस्य सम्मेलन में। बोला दीदी कल घर छोड़ देंगे, वहां कौन करेगा, यहां तो हमने कर लिया। मैंने कहा आऊंगी तो देखूंगी, कोई मेड सर्वेंट मिले, कोई मिले तो देखती हूँ। कह तो दिया उनको, तो तसल्ली दे ली, लेकिन खुद चलता रहा। बाबा अभी क्या होगा। मॉर्निंग में फोन आता उसी बहन का, मैं चली जाऊं अगर आप कहें तो, मैं मुझे मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं बहुत असहाय छोड़ के आई हूं, कोई नहीं है वहां। मैंने कहा चली जाओ बहन, इससे अच्छी क्या बात। और मैं भी कोई मेड सर्वेंट जेब में थोड़ी रखी हूं, खोजूंगी। आप लोग सभी खोजो, मिल जाए तो अच्छा है। वहां पहुंची, पहला फोन मिला, एक बहन मिल गई है। कितना शुक्रिया मैंने दिल से बाबा को दिया होगा, बता नहीं सकती आपको। एक ही दिन के लिए इलाहाबाद गई थी, अभी मिलके आई उनको। मैंने कहा जब आप चलने लगोगे तब मुझसे मिलना। वो बहन कहती है आप क्यों मुझ पर इतना खर्च कर रहे हो। मैंने कहा इसलिए कि तुम निश्चिंत रहो, जरा भी नहीं सोचना कि ये पैसा कहां से आया, कहां गया, कौन खर्च कर रहा है, सब बाबा कर रहा है, तुम निश्चिंत रहो, चलने लगोगे तब। ऐसे कैसे, मैंने कहा कोई घबराओ नहीं, सत्युग में सब वसूल लूंगी ब्याज सहित। तो ये क्या है कि हमारा दैवी परिवार, वेद हमें वर्ण करें, मैं क्यों सुना रही हूं कि हमें इस परिवार को एक सूत्र में आज बाबा ने कैसे रखा, हम किसको फॉलो कर रहे हैं। साकार बाबा ने जब यज्ञ में बेगरी पार्ट था, कैसे इस यज्ञ को थाम के रखा, वो जो ब्रह्मावत्सों का परिवार था उसे बांध के रखा, कभी अभाव महसूस नहीं होने दिया बाबा ने, किसी भी ब्रह्मावत्स को ये नहीं होने दिया कि आज यज्ञ में ये चीज नहीं। भंडारी दादी जो थी, भोली दादी, उनको कह दिया यही बनेगा और इतना ही इतना सर्व किया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं देना, चलेगा। अभी चलेगा, बाबा ने तो चला दिया, लेकिन जब सब खा रहे थे बैठ के तो किसी ने दोबारा डिमांड कर ली रिवाइज कोर्स। अब पुनरावृत्ति कैसे हो। वो बहन जो सर्विस दे रही थी उसने बाबा की ओर देखा, साकार बाबा माना बैठा हुआ अभी, अवज्ञा हो जाएगी अगर वो दोबारा डालती है तो, और नहीं डालती है तो वो मांग रही है, उसको कैसे मना कर दे। बाबा ने बहुत प्यार से ये सारा किया और अपनी थाली से कटोरी उठाई और कहा बच्चे को दे के आओ। अब जिसने मांगा था वो तो यूं यूं हो गया कि कहां मांग लिया, आज बाबा दाल नहीं खाएगा। तो बाबा ने कैसे इस यज्ञ को चलाया है, अपनी थाली में से भी शेयर किया, अपनी चीजों में से भी शेयर किया। इस यज्ञ ने जो आज इतने शिखर तक का सफर किया है, वो बाबा की एक एक पल की सहयोग की वृत्ति से हुआ है। मैं कभी नहीं भूलती हूं पहली बार जब ये सोफों के लिए करुणा भाई रेगजीन किसी फैक्ट्री से करा के लाए थे, दादी ने बड़ी दिल खोल के महिमा की थी, ये ब्राह्मणों के बैठने के लिए, माने यूनिवर्सिटी है तो जैसा कोई बहुत बड़ी चीज हो गई हो। हाँ, पीले रंग का रहेंगे तो बहुत सी चीजें, माना यज्ञ को आप उस रूप से देखो, आदि से देखो, फिर से वो दिन आने वाले, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जिस बेगरी पार्ट से उठ के हम बहुत ऊंचे उठे थे, फिर से वो दिन आने वाले दिखाई दे रहे हैं सामने। हमें अपने आप को, हम चले जानिबे मंजिल की ओर, लेकिन फिर समेटना है, बिंदु से विस्तार में गए, रिटर्न जर्नी करनी है। हर एक के प्रति हमको सहयोगी बनना है, हर एक के प्रति हमको स्नेही आत्मिक भाव से देखना है, हर समय रूहानियत की ड्रेस में रहना है, हर समय दिव्य संस्कारों का सहयोग देना है। वेद हमको वर्ण करें, अरे वेद क्या वर्ण करेंगे, जो भगवान की वाणी है वो हमारे अंदर समा जाए, जो समान बाबा हमें रोज दे रहा है, जो वरदान रोज दे रहा है, हमारे पुरुषार्थ की एक कड़ी बन जाए। अगर जैसे मम्मा ने आज सुना और कल मम्मा के जीवन में था, वो चीज हमारे अंदर भी आ जाए। हम जो अपने आप को तपाने आए हैं, हमसे भी धुआं निकलने लगे ना, सारी विकृतियां हम यहां स्वाहा करके चले जाएं। आज हमारे पास गिनी चुनी दादियां हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है इस यज्ञ की। इन दादियों ने कैसे कैसे पार्ट बचाए, लेकिन कभी उफ नहीं की, कभी नहीं कहा कैसे चलेगा, कभी नहीं कहा बाबा बाबा तो कुछ समझते ही नहीं है, भेज दिया बस हमको, हाँ कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। भगवान की एक नजर, भगवान की एक बात, भगवान की एक आज्ञा सर माथे पर रखी है। हम कैसे कहते हैं चलेगा, हम तैयारी करने आए हैं, और ऐसी तैयारी करने आए हैं कि अगर कल हमको जाना हो, क्या किसी को पता है कि कब जाना है? पता है किसी को इस लौकिक दुनिया से कब हमारा डेरा उठ जाएगा? फिर हम क्यों फैलाए बैठे? फिर हमने कहां कहां अपने को लगा रखा है? विचार करके देख लो। तो जहां जहां आज से बहुत पहले अबाउट 19 मैं समझती हूं 74 के आसपास का एक मैसेज अव्यक्त बाप दादा का संदेशी बहन लेकर के आई थी। बाद में वो रिवाइज भी हुआ है कि बाबा पंछियों को उड़ा रहा है, कुछ एक बार में उड़ गए, कुछ उड़ते थे पुनः बैठ जाते थे, कुछ झटका देके उड़ गए। तीन तरह के पंछी थे, बहुत पहले बाबा ने सुनाया था। कई संदेश भेजे हैं, अव्यक्त बाप दादा के संदेशों की एक किताब भी है, देखना उसमें। तो हम जो चिपके रह गए हैं कहीं, वो उड़ना चाहते हैं लेकिन हमारे बंधन हमें पुनः वहीं बिठा देते हैं, हमें तैयारी घर चलने की नहीं करने देते। लेकिन कभी कभी हम दूसरों को उड़ता देखते हैं, झटका मारते हैं, उड़ जाते हैं, और कभी कभी झटके भी मारते हैं तो नहीं उड़ पाते हैं। वजह हमारे अपने बांधे हुए बंधन है, कुछ और नहीं। तो तैयारी के लिए हमको निर्बंधन भी बनना पड़ेगा। वो जो हमारी बहन ने भी बड़े प्यार से कहा, क्या करें परिस्थितियां हैं, पराई स्थिति है, हमारी बनाई है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर बंधन मुक्त होना है ना, तो ये बंधन 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 जितना रिवाइज करोगे उतना आपको बांधते जाएंगे। और जब आप सोचोगे मैं निर्बंधन हूं, मुझे सेवा करनी ही करनी है, मुझे जाना ही जाना, मुझे खूब याद है बाबा ने कहा, जितनी सेवा करोगे तुम्हें दुआएं मिलती जाएंगी और तुम बंधन मुक्त होते जाओगे, क्योंकि दुआओं का पलड़ा भारी हो जाएगा। और जो लोग बांध रहे हैं वो कहेंगे मानता तो है ही नहीं, ये तो रोज जाता है, जाने दो ना, क्या करोगे, छोड़ दोगे। ये बाबा के माँ वाक्य हैं और मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। ठीक इसी तरीके से महावीर स्वामी के साथ भी ये घटना घटी थी कि उनके बड़े भाई से उन्होंने आज्ञा मांगी थी, मैं जाऊं, तो उन्होंने कहा क्या करोगे, अभी अभी पिताजी गए हैं, अभी अभी वो गई हैं, और तुम कहते हो मैं भी चला जाऊं, मैं अकेला राज्य में पड़ जाऊंगा। बोला ठीक है, नहीं जाता हूं, नहीं जाता हूं। रोज आते थे, रोज जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा, तुम कहीं जाना चाहते थे? तो बोले मैं तो चला गया हूं, मैं हूं कहां, माना जब मैं किसी एक्टिविटी में भाग ही नहीं ले रहा हूं, मैं भोजन के किसी स्वाद में जा ही नहीं रहा हूं, मैं राज्य दरबार के शरीर से आ रहा हूं, जा रहा हूं क्योंकि ड्यूटी है इसलिए कर रहा हूं, भोजन पे बैठ रहा हूं, तो मैं तो कब का चला गया हूं, चला गया हूं माना शरीर से बाहर नहीं गया लेकिन अंदर चला गया हूं, आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने अंदर चला गया हूं। तो जब हम यहां तपस्या करने आए हैं ना, कोई बंधन नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, ये सब मन की है। आप जितना जितना खजाना जमा करते जाओगे, अगर बाहर नहीं कोई जाने देगा तो अंदर जाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। अंदर चले जाओ ना, तो यहां जितने दिन हो अंदर चले जाओ। जितने अंदर चले जाओगे उतना ही तप के धनी बन जाओगे, उतनी ही तपस्या सफल हो जाएगी। जितना जो कुछ वजन है उसे यहीं छोड़ देना, न छोड़ पाओ तो बाबा के कमरे में जाके बोल देना अब तो छुड़ा दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए, क्या हो पता नहीं, पता नहीं। हमें तैयार तो रहना ही चाहिए। ये जो मैं आपको क्रोध मुक्त होने वाली बात कह रही थी, और भी इसके पीछे साइंटिफिक कॉज है। हम कहते हैं अब क्रोध नहीं आता, थोड़ा थोड़ा दादी से बोला एक बार जोश आ जाता है। चंद्रमणि दादी यही बोल रही थी, बोली अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बनोरमा से पूछो, हर समय खुश रहती है। हमारे साथ जो वही दीदी थी बोली अरे दादी कभी कभी ये बहुत तेज गुस्सा करती है और बोलती है गोली मार देंगे। दादी हाँ ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ दादी, एक सेकंड के लिए आता बहुत जोर का तो मुसीबत हो जाता, रहता नहीं है। बोला नहीं नहीं ये भी गड़बड़ है। तो चंद्रमणि दादी तो वैसे भी खूब हंसी कह के बोली ये भी गड़बड़ है। मैंने कहा है तो गड़बड़, लेकिन आ जाता है कभी कभी, खराबी है कई इंस्ट्रूमेंट में। सोचने लगी वाकई सही है कि अगर वो जो एक सेकंड है ना, जिस समय मुझे एक सेकंड में आया और मैंने आपको कुछ बोला, मान लो उसी समय ब्रेन हेमरेज हो गया तो मेरी अंत मति सुगति क्या होगी? पैरालिसिस हो गया, क्योंकि जिस समय क्रोध आता है सारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे सारी बॉडी में हो रहा है वो केवल ब्रेन में होता है। आंखें लाल, चेहरा लाल, बड़े क्रोध में, हाँ हाथ पैर कांपने लगते हैं, क्रोधी की यही निशानी है ना। अच्छा मान लो कम भी हो गया, सामने वाला चला गया, दूसरा कोई आ गया बात करने के लिए, तो भी कहते चुप रहो, थोड़ी देर शांति रखो, थोड़ा मुझे शांत हो लेने दो। मैं जो अशांत हुई उस उन क्षणों में अगर कुछ हो गया तो मेरी अंतमति क्या होगी? तो मुझे यहां छोड़ के ही जाना है, छोड़ के ही जाना अगर कुछ भी है सूक्ष्म में है, नहीं तो मेरी ड्रेस तैयार नहीं होगी, मैं सफर पे जाऊंगी कैसे? मेरी दिव्यता मेरे संस्कारों की चीज सामने नहीं आएगी तो लोग कहेंगे कहते तो हैं योगी हैं लेकिन ग्रेस नहीं है चेहरे पे, है ना। जो बाबा हम बच्चों से चाहता है कि हम ब्रह्मर्षि बन जाएं, हम तद्भव हो जाएं, हम बाप समान हो जाएं, हम लवलीन हो जाएं, हाउ इज इट पॉसिबल? ब्लड भी दूसरे को तभी चढ़ाते हैं जब उसका ग्रुप मिलता है। हम बाबा के दिल तख्त पर तभी बैठ सकते हैं जब देह भान की भी मिट्टी पैरों में ना हो। क्या गंदे पैरों से चढ़ जाएं? कितने दिन हम कितने घंटे कितने मिनट्स इस समान में रहे? बहुत अच्छा मौका है। क्या आप पांडव भवन में हो? जीवन के एक एक पल जो बड़ी मुश्किल से, हम जानते हैं कि आप सब बहुत व्यस्त हो, माया नगरी के वासी हो, बिजनेस और चीजें बिजी रखती हैं बहनों को भी भाइयों को, एक एक पल को सफल करना, एक एक पल को जीना है और बाबा के साथ जीना है। तैयारी तभी हो पाएगी, नहीं तो एक से एक आएंगे यहां आपको समझाएंगे बताएंगे, लेकिन तैयारी तो आपको ही करनी है ना। तो अपना टाइम टेबल बनाओ कि जितने दिन हम यहां हैं हमारा एक पल एक श्वास जाया ना हो, बर्बाद ना हो। ठीक है, ओम शांति।
बहुत बहुत दिल से थैंक्स। सिर्फ आज का दिन है जो हम जोर से ताली बजा के धन्यवाद दे सकते हैं। इसके बाद ज्यादातर अभिनंदन और तालियां, क्योंकि बस आज के बाद आप मौन हो जाने वाले हैं 3 दिन के लिए, तो ऐसे ऐसे करके देंगे, ठीक है। इस तरह से अभिनंदन, ऐसे धन्यवाद, क्योंकि बोलना नहीं है ना, तो नीचे तक आवाज भी जानी नहीं चाहिए। बहुत बहुत अच्छे उदाहरण अपने खुद के एक्सपीरियंस बताकर मनोरमा दीदी जी ने बहुत ही दिलचस्प तरीके से हम सभी को जो ये बहुत अच्छी बातें प्रैक्टिकल करनी है, तो मुझे लगता है कि अभी से शुरुआत कर देनी है।